الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، إيش لي تندلو سي ہم گفتگو کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن، جب اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. یعنی یہ 7 لوگ، اربوں کھربوں لوگ دھوپ اور گرمی میں، یہ 7 قسم کے لوگ جو ہیں ان کو اتنی عزت ملے گی کہ نہ صرف اللہ رب العزت انہیں سایہ دیں گے، اللہ رب العزت اپنے مبارک عرش کو سایہ. اس میں سے پہلا شخص تھا عادل بادشاہ، اور اس پہ ہم گفتگو کر چکے. اور دوسرا جس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہے عبادت گزار نوجوان. اور پچھلے چند دنوں سے ہم اس دوسرے شخص کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے ایک بات تو یہ کہی کہ کیونکہ جوانی کا وقت جو ہے بہت ہی نشے کا وقت ہوتا ہے، نوجوان جس چیز کو بھی کرتا ہے بہت ہی جوش و جذبے سے کرتا ہے، اس کے اندر شہوت بھی زیادہ ہوتی ہے، طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کے پاس زندگی کا وقت بھی زیادہ ہوتا ہے ابھی، تو اس لیے اس کی توجہ جو ہے وہ دنیا کی طرف زیادہ، آخرت کی طرف تھوڑی ہوتی ہے. تو ایسی صورتحال میں جو نوجوان عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے تو وہ واقعتاً بہت بڑا کام کرتا ہے. اس لیے قیامت کے دن کے جو 7 لوگ جن کو عرش کا سایہ ملے گا، اس میں سے ایک عبادت گزار نوجوان ہو. اس حوالے سے ہم نے یہ عرض کیا کہ عبادت اللہ کو پسند ہے، اور ہم نے قرآن اور حدیث میں سے 5 باتیں عبادت سے متعلق، 5 فضائل عبادت کے آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا. اس میں سے 4 ہم پچھلی 4 مجالس میں بات کر چکے. پہلی چیز یہ کہ عبادت ہمارے پیدا کرنے کا مقصد ہے، ہم اس دنیا میں عبادت کے لیے آئے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. دوسری بات اس عبادت سے متعلق ہم نے کی وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے دل کا اطمینان عبادت میں رکھ دیا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تیسری بات جو قرآن سے ہمیں پتہ چلتی اور وہ یہ کہ اللہ نے عبادت ہی میں کامیابی رکھ دی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور چوتھی چیز، جو شخص عبادت کرتا ہے اسی کو تقوی نصیب ہوتا ہے، یعنی جو شخص عبادت کرے گا وہی گناہوں سے بچے گا. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم وخلق من قبلکم لعلکم تتقون. لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ. تو کل کی مجلس میں اس بات پہ گفتگو ہوئی، गुनाहों से बचने की जो चाबी है वो इबादत है। ये मुमकिन नहीं, एक शख्स गुनाहों से तो पूरी तरह से बच रहा है और इबादत नहीं कर रहा है। इबादत करने वाला ही गुनाहों से बचेगा। और आज की इस मजलिस में इबादत से मुतालिक पांचवी बात करना जरूरी है। हदीस कुदसी, नबी अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मेरा बंदा नफली इबादत करते करते मेरे इतने करीब हो जाता है कि मैं वो आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, और मैं वो कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, और मैं वो जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है। तो इबादत की पांचवी फजीलत, पांचवी बात जो मशायख ने बयान फरमाई वो ये कि इबादत करने वाले को एक बहुत गहरी फरासत, बहुत बड़ा नूर नसीब होता है। इबादत नहीं करने वाले को मिल ही नहीं सकता। इसीलिए नबी सलाम फरमाए इत्तकू फरासतुल मोमिन, कि तुम डरो मोमिन की फरासत से। फ इन्नहू यंजुरु बिनूरिल्लाह, वो तो अल्लाह के नूर से देखता है। तो इबादत करने वाला उसे एक नूर नसीब होता है, उसे समझ बूझ नसीब होती है, मामला फहमी नसीब होती है। और जिस चीज को मशाए कश्फ कहते हैं कि दिल की आंख जिसको कहते हैं, वो भी नसीब होती है। तो मशहूर वाक्य है, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत है, और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के इस दौर खिलाफत में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एक रात ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब में वो देखते हैं कि वो मस्जिद नबी में आए नमाज पढ़ने के लिए। नबी अलैहि सलात वसलाम नमाज के लिए तशरीफ लाए, और हजरत अली ये देखते हैं कि उनको बिल्कुल अल्लाह के नबी की पीछे उन्हें जगह मिल गई नमाज के लिए, फजर की नमाज। ख्वाब में पूरी फजर की नमाज देखते हैं, दोनों रकतें पूरी इत्मीनान से पढ़ते हैं। ये हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को दौरे खिलाफत का वक्त है। फिर वो ये देखते हैं कि नमाज मुकम्मल हुई, और आप अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नत थी कि आप फजर की नमाज के बाद लोगों की तरफ रुख करके तशरीफ फरमा होते, तो उसी तरह अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा हुए नमाजियों की तरफ नमाज मुकम्मल करने के बाद। और एक औरत एक थैले में खजूर लाई और उसने ला के आपके सामने रख दी है कि ये आपके लिए है अल्लाह के नबी। तो हजरत अली फरमाते हैं कि क्योंकि मैं बिल्कुल सामने, तो नबी अलैहि सलात वसलाम ने उस खजूर के थैले में से दो खजूरें निकाली और मुझे दे दी, और मैंने वो दो खजूरें ख्वाब ही में वो दोनों खा ली, और मुझे बहुत लज्जत मिली, और इतने में आंख खुल गई। तहज्जुद का वक्त था, बहुत ही खुशी हुई कि अल्लाह के नबी की ज़ियारत भी हुई। ख्वाब में उनके पीछे फजर की नमाज पूरी देखी अपने आप को पढ़ते हुए, फिर आपके मुबारक हाथों से ये खजूर मिली जो कि इतनी लजीज थी कि उसकी लज्जत बहुत जोरदार तरीके से ख्वाब में महसूस हुई, और फिर आंख खुल गई। फरमाते हैं कि बहुत ही खुशी के आलम में तहज्जुद की नमाज अदा की मैंने, फजर की अजानें हुई, और अजानों के बाद मस्जिद में नमाज के लिए हाजिर हुआ। कहने लगे कि मस्जिद में हजरत उमर रजी अल्लाह नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए और मुझे उनके पीछे उसी तरह से जगह मिल गई जैसे मैंने ख्वाब में अल्लाह के नबी के पीछे नमाज पढ़ी थी। फरमाते हैं कि मुझे हैरानगी हुई कि फजर की नमाज में जो सूरतें नबी अलैहि सलातो वसलाम ने ख्वाब में पढ़ी थी वही सूरतें हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फजर की नमाज में अदा फरमाई। तो मैं हैरान हो गया। फरमाते नमाज मुकम्मल हुई तो हजरत उमर उसी तरह ख्वाब में जैसे मैंने नबी अलैहि सलातो वसलाम को देखा था, आप उसी तरह से नमाजियों की तरफ रुख करके तशरीफ फरमा हो गए। फरमाते हैरानगी की इंतहा तो उस वक्त ना रही जब ये अल्लाह की तरफ से हुआ कि एक औरत आई और उसने भी एक खजूर का थैला हजरत उमर को हदिया किया कि यह आपके लिए हदिया है। फरमाते हैं कि हैरानगी उरूज पे थी तो मैंने ये देखा कि हजरत उमर ने भी उसी तरह से दो खजूरें निकाल के मुझे दी और मैंने उसी तरह जैसे ख्वाब में देखा था वो दो खजूरें खाई और मुझे बहुत ही लजीज लगी। फरमाते हैं कि मैंने हजरत उमर से अर्ज किया कि बहुत ही मजेदार ये खजूर है, क्या मुझे और मिल सकती है? उस वक्त हजरत उमर ने फरमाया कि ए अली, अगर अल्लाह के नबी तुम्हें दो से ज्यादा देते तो मैं भी तुम्हें दो खजूरों से ज्यादा दे देता। ये इबादत का नूर होता है, इंसान को फरासत नसीब होती है। तो जब तक इबादत नसीब नहीं तब तक तकवा नसीब नहीं, और जब तक तकवा नसीब नहीं तब तक फरासत नसीब नहीं। तो इस बात से मुताल्लिक ये पांच बातें करना बहुत जरूरी। आम तौर पे हम जो इबादत करने से महरूम रहते हैं उसकी हम वजह ये बताते हैं कि ये हमारी मसरूफियत है। सच्ची बात तो यह है कि जितनी भी मसरूफियत दुनिया की हो ये अक्ल के खिलाफ है कि इंसान अपनी मसरूफियत की वजह से अपने मकसद ही को छोड़ बैठे। दुनिया में आने का मकसद तो इबादत है। कुरान ने हमें बताया अल्लाह ने इंसानों को इबादत ही के लिए बनाया है। तो पहली बात तो यह है कि कोई दुनियावी कामों के लिए अपने मकसद को नहीं छोड़ता। मगर दूसरी बात जो मशायख ने फरमाई वो ये है कि इबादत नहीं करने का मकसद की जो वजह है वो मसरूफियत नहीं होती बल्कि इबादत नहीं करने की वजह ये तौफीक होती है। कई मरतबा इंसान ये समझता है कि मैं मसरूफ था, मैं थका हुआ था, मुझे देर हो गई इसलिए मैं इबादत नहीं कर सका। अगर सच्ची बात यह होती कि इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे को ये तौफीक ही नहीं देना चाहते। मशाए का कौल ये है कि तहज्जुद के औकात में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों की दो जमातें बनाते हैं। एक जमात होती है जो पर मार के सोने वाले को उठा देती है, जो अल्लाह के बरगुजीदा बंदे होते हैं तहज्जुद के वक्त एक फरिश्तों की जमात उन्हें उठाती है और वो नमाज पढ़ते हैं, और दूसरी एक जमात है जो थपकी दे के सुलाने वाली जमात है। ये जमात फरिश्तों की आती है और ये थपकी देती रहती है कि तू सो यार है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे इस मुबारक वक्त में इबादत की तौफीक नहीं देना चाहते। तो सच्ची बात यह है कि इबादत नहीं करने का ताल्लुक मसरूफियत के साथ नहीं, बल्कि इबादत जो हम नहीं कर पाते उसका ताल्लुक तौफीक के साथ है। इसलिए सबसे बड़ी चीज जो है जो हम अल्लाह से मांग सकते हैं वो इबादत की तौफीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये तौफीक नसीब फरमाए। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. بس جیسے کہ پہلے اعلان کیا گیا تھا اس جمعرات کو انشاءاللہ اسلامی فائنانس کانفرنس ہے ہدایہ اکیڈمی میں اس جمعہ کے دن جمعہ 22 اگست کو شام 7:30 بجے ہدایہ اکیڈمی کے قریب ہی ڈی ایچ اے صفا یونیورسٹی آڈیٹوریم میں کانفرنس ہے. تو اس حوالے سے حضرت ڈاکٹر عمران اشرف عثمانی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں میزان بینک کے CEO انویسٹمنٹ سائٹ کے وہ بھی آ رہے ہیں. اسی طرح IBA یونیورسٹی کے ڈین جو ہے بزنس اسکول کے وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. ملک کے بڑے اسٹاک بروکرس ان کو بھی دعوت دی وہ بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ٹاپک یہی ہے کہ کیا شیئرز کے اندر سرمایہ کاری حال ہے یا نہیں. اس میں ضرور خود بھی شرکت کریں اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور مدعو کریں. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.